परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। ओम शांति। अभी ये सीरीज चल रही है रूहानी क्रांति, उसमें एक टॉपिक मिला हुआ है कि श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, उसकी मोलने की डेट है 14 अप्रैल 1977। तो तस्वीर की जो विशेषताएं हैं, उस तस्वीर की विशेषता बाबा ने पूछा है कि आपने अपनी तस्वीर ऐसी बनाई है जिस तस्वीर में रूहानियत हो, क्योंकि रूहानियत और विशेषताएं हैं। तो विशेषता कैसी होनी चाहिए? रूहानियत की होनी चाहिए। ऐसे रूहानियत की विशेषता माना क्या है? तो तस्वीर जो होती है उसमें मुख्य देखते हैं, मुख को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। तकदीर माना भाग्य, इसका तकदीर कैसा है? बच्चा जन्म लेता है तो उसकी तकदीर में क्या है, उसकी भाग्य लिखते हैं। तो तकदीर बाबा ने कहा है कि तस्वीर जो है वो कैसी होनी चाहिए? आपने अपनी तस्वीर ऐसी बनाई है, क्योंकि बाबा हमेशा हमको कहता है कि अपना लक्ष्य सामने रखो। कौन सा लक्ष्य है? कि लक्ष्मी नारायण बनना। वो लक्ष्य बहुत बड़ा दिया हुआ है, उनकी तस्वीर को देखो और तस्वीर को देखते हुए अपने को देखो कि अपनी तस्वीर भी ऐसी बनाई है जिसमें नैनों में क्या होना चाहिए? रूहानियत होनी चाहिए, आत्मिक स्मृति होनी चाहिए। और जितना भी बाबा ने शुरुआत में भी जितना अभ्यास कराया है, रूहानियत का अभ्यास कराया, आत्मिक स्थिति का बहुत बड़ा अभ्यास कराया है, और वो जिन्होंने इतना अभ्यास किया है वो अंत तक भी आत्मा के पाठ को पक्का कर दिया है। तो रूहानियत भरी तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जो एक बाप की राह बता सके, रास्ता बता सके कि यही रास्ते पर जाना है। जैसे कहते हैं ना कि कोई तस्वीर ऐसी बनी हुई या मूर्ति ऐसी बनी हुई होती है, अच्छी व बुरी, तो नज़र कहाँ जाती है भी ऐसी तस्वीर किसने बनाई होगी? अच्छी तस्वीर होंगी तो भी उस रचयिता को ढूंढते हैं, और अच्छी नहीं बनी तभी भी रचयिता को ढूंढते हैं करेक्शन करने के लिए। तो जो रचयिता है तस्वीर को देख करके उसको ढूंढने लगते हैं कि किसने ऐसी अच्छी तस्वीर बनाई है। तो बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि ऐसी अपनी तस्वीर बनाई है जो बाप को, रचयिता को तरप आकर्षित हो जाए कि ऐसे बनाने वाले कौन है। तो तस्वीर में तकदीर है, तकदीर माना भाग्य, भाग्य माना क्राउन, ताज, क्योंकि ताज है और तिलक है, स्मृति का तिलक है और ताज है, तो लाइट हाउस वो ताज है, पवित्रता का ताज। जहाँ पवित्रता है वहाँ सब कुछ है, पवित्रता नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बाबा कहते हैं हम बच्चों को बनाई है ऐसी। तो बाबा ने कहा कि भाग्य हमारा है लाइट हाउस बनना, लाइट हाउस बनना और सबको राह दिखाना। तो लाइट हाउस का कर्तव्य क्या है? सबको सही रास्ता बताना। अगर गलत भी हो जाए तो अब बहुत एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए लाइट हाउस का कर्तव्य क्या है कि बाबा कहते हैं कि ऐसे आपने अपना प्लान बनाया है कि लाइट हाउस बने और सबको सही रास्ता बताएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो पुराने बच्चे हैं उन्हें आह्वान किया है और आह्वान किया है कि मिलने के लिए आह्वान किया है। तो बाबा कहते हैं जब आप नयों को कहते हो कि आप बाबा को बुलाते हैं, इसका मतलब क्या है? मरजीवा बनने के लिए बुलाते हो, घर वापस ले जाने के लिए बुलाते हो। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट के लिए बाबा बताते हैं कि आप अपना रिजल्ट देखा है आपने, रिजल्ट क्या है? अब आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं तो इम्तहान जब होती है तो बाबा कहते हैं इम्तहान जब होती है तो पढ़ाई पूरी होती है तभी, और इम्तहान तब होती है तब पढ़ाई पढ़ाया नहीं जाता है, उसका इम्तहान होता है। और इम्तहान जब होता है तो बाबा कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई का मालूम है कि हम कितना पढ़े हैं और बाबा ने कैसे पढ़ाया। संकल्पों से पढ़ाया है, वाणी से भी पढ़ाए, कर्मों से भी पढ़ाया। संकल्पों से कैसे पढ़ाया है? कभी कभी बाबा कहते हैं सभा में, वाणी से नहीं लेकिन संकल्पों से बाबा कभी कभी मुस्कुराते हैं, कभी हाथ उठाते उठाने के लिए कहते, फिर बाबा देखते सभी ने हाथ उठाया तो मुस्कुराते हैं। और कई बार है ना, माताएं जो होती है बहुत लास्ट में बैठती है, उसको संकल्प आता है, ये देखो पुराने को तो आगे बैठने को मिलता है, लेकिन बाबा उसकी ऐसी इच्छा पूरी कर देता है, उसको लगता है कि बाबा जैसे सन्मुख मिल रहा है, ऐसा अनुभव कराता है। तो ये बाबा का अनुभव कराना, तो ये एक संकल्प द्वारा बाबा बहुत बहुत कुछ कर देता है। वाणी द्वारा तो बाबा ने पढ़ाया है, अगर वाणी द्वारा पढ़ाते ही नहीं तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते। तो वाणी द्वारा पढ़ाना वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और वाणी द्वारा बाबा ने कितना पढ़ाया है, कितना परिवर्तन कर दिया। अभी तो बाबा ने समेट लिया सब कुछ, और परिवर्तन कैसा किया, पहले कैसे मिलते थे घंटे घंटे एक एक व्यक्ति को देता था, और अभी बाबा कहते ऊपर ही आ जाओ, अभी आपको ऊपर ही आना 24 घंटा, ऐसा बताया है। तो रिजल्ट लेने के लिए बाबा आया है, और बाप दादा ने कैसे पढ़ाई पढ़ाई है, प्रैक्टिकल भी पढ़ाया है और बहुत बार होमवर्क भी दिया है। कभी कभी होमवर्क दिया है उसका रिजल्ट पूछा नहीं, लेकिन बाबा को मालूम है, और बाबा बच्चों की लाज भी रखते हैं कि नहीं किया हो तो पूछूंगा अच्छा नहीं, इसलिए बाबा पूछते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप चेक करो कि जितना आपने पढ़ा है तो क्यों पढ़ाया है बाबा ने, बाप समान बनने के लिए। तो बाबा जैसा है वैसा प्रत्यक्ष प्रमाण वही है, और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि प्रमाण, श्रीमत प्रमाण बाबा कहते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। जैसे कोई किसी को अनुभव बताता है, कोई किसी को कुछ बताता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण वो बहुत ही श्रेष्ठ प्रमाण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी प्रमाण से श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। ऐसे कोई भी देखे अनुभव करे कि ये किसने पढ़ाया होगा, उसको पढ़ाने वाला कौन होगा, उसका साक्षात्कार हो जाए, ऐसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। बाकी जो भी हम कुछ भी करते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई प्रमाण पत्र देता नहीं है, और देता है तो पीछे से ऐसा कहता है नहीं नहीं ठीक नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण माना क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण माना, बाबा कहते हैं आप जो हो, जैसी हो और जिसकी हो, वो आपको स्मृति में रहना चाहिए। यहाँ पाठ बजाते बजाते सब कुछ भूल गए हैं, अपने को देह अभिमान में लाए, शरीर का भान है, लेकिन जो ओरिजिनल था वो हम भूल गए हैं। तो हम किसके हैं वही भूल गए, कहाँ से आए हैं वही भूल गए, हमारा स्थान कौन सा है वो भूल गए हैं। तो बाबा ने फीमेल और मेल का एक एग्जाम्पल दिया था कि जो ड्रामा करते हैं फिल्म में, जो एक्टर्स होते हैं, कभी मेल फीमेल बनता है, फीमेल मेल बनता है, लेकिन उसको कब कब तो सारे ड्रामा में हो ही जाता है कि हम फीमेल है या मेल है, ओरिजिनल क्या है वो। तो ऐसे बाबा कहता है कि आपको ये पता नहीं पड़ता है कि आप ओरिजिनल क्या हो। ओरिजिनल जब इस संसार में आप आए हो तो एक आत्मा हो, कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो, आपका कौन है। इस संसार में अभी सबको अनुभव हो जाता है कि किसी का कोई नहीं है। ब्राह्मण परिवार में भी पहले समझते थे ब्राह्मण परिवार हमारा ही है, लेकिन बाबा ने पहले दिन से पाठ पक्का कराया कि आपका मैं ही हूँ, कोई आपका है ही नहीं। लेकिन हमने समझा नहीं, हम ऐसे ही समझे कि ये सभी अपने ही है। जब धोखा मिलता है तो मालूम पड़ जाता है कौन किसका है टाइम पे। और ऐसा अभी हुआ है कि अभी तो किसका बॉडी किसको देते मालूम ही नहीं पड़ता, ठक करके देते हैं। आप अपना समझ करके उसको जो भी करना है कर दो। तो अभी ऐसा है कोई किसी का नहीं है। तो जो जाते हैं उसको अंदर से, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, उसको थोड़ा आत्मा का ये तो होता है कि ये देखो मेरे साथ कोई नहीं है, फील तो होता ही होगा ना। तो कहने का मतलब कि अभी ऐसा समय आया है। तो हाँ, आप जो हो, जिसके हो, जहाँ के हो, वो अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान, उसकी स्मृति में रहो। लेकिन क्या है, कभी कभी हम भूल जाते हैं और फिर से हम जब याद करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, मध्य काल में या तो द्वापर युग में पहुँच जाते हैं। द्वापर युग तो है ही कैसा, वो तो देह अभिमान वाला है। तो बाप का आह्वान किया है पुराणों ने, तो बाप का आना माना क्या, वापस घर ले जाना, परिवर्तन करना, विश्व का परिवर्तन करना। तो बाबा पूछते हैं कि विश्व का परिवर्तन करने की हलचल, कितनी हलचल यहाँ होती है, इतनी हलचल हो रही है अभी तो बहुत ही, सारी दुनिया में 80 साल में लोगों ने बहुत मेहनत की, कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने एक बार बोला था मैं चुटकी में सब कुछ कर दूंगा, और अब चुटकी में देखो सबको घर से अलग किया, होटलों से अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया, भोजन से अलग कर दिया, और बाबा ने अंत में सबको वापिस वन बाय वन ले भी जाता है, जैसे एक गेट खुल गया हो। तो एक चुटकी में बाबा ने कहा था कि मैं तो चुटकी में कर सकता हूँ, ऐसा लगता था चुटकी में बाबा कैसे करेगा, अपने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन अभी देखो, ये भाई कल बात कर रहे थे कि पहले तो हम जाते थे यहाँ घूमने के लिए ऊपर पहाड़ी पर, तो ये फॉरेस्ट वालों ने हमको मना कर दिया, और अभी तो ये कोरोना ने मना कर दिया, घूमना ही हमारा बंद हो गया है। हाँ, जानवरों को भी हो गया, ऐसा मैसेज आया था एक बार न्यूज़पेपर में कि 8 शेर को कोरोना हो गया। तो बाबा पूछते हैं कि विश्व परिवर्तन करने की हलचल देखती हुई अचल हो, एवर रेडी हो पेपर देने के लिए। तो पेपर तो बहुत आते हैं, हर एक को अनुभव है, जब से ब्राह्मण बनते हैं तब से पेपर तो आता ही रहता है। पहले तो समझते पेपर बाबा के बन जाएंगे तो पेपर बंद हो जाएंगे और खुशी खुशी में रहेंगे, लेकिन पेपर तो बाबा तो बराबर एग्ज़ाम ले रहा है। ऐसे कहता है ना कि लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर तो नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो छोटे छोटे हद के पेपर भी बहुत है, छोटे छोटे पेपर है, वो है सबसे पहले कौन सा पेपर है, स्वयं के संस्कारों का। हमारे संस्कार ऐसे हैं जो इतने जन्म लेते लेते हम संस्कार थोड़े जड़ हो गए हैं, मतलब कि लगते हैं कि चेंज हो जाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। तो स्वयं के संस्कारों का पेपर कभी कभी ऐसा लगता है, अकेले रहते तो मालूम नहीं पड़ता है, साथ में रहते तो मालूम पड़ जाता है, एक दूसरे के संस्कारों की टक्कर हो जाती है। स्वयं के व्यर्थ संकल्पों की भी पेपर आता है, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो एक सेकंड तो संकल्प चलता ही है, ऐसे तो प्रूफ नहीं बन गए कि संकल्प चले ही नहीं, तो व्यर्थ संकल्पों का संकल्प पेपर आता है। फिर हमारे में हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन बाबा ने कहा था कि मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार भी लिखो, लेकिन महसूसता नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं। माताएं नोट भर देती है पूरी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूरी नोट भर भर के वहाँ किचन जो होता है ना चाय का वहाँ डाल देते हैं। कहने का मतलब कि आत्मा आत्मा तो लिखते हैं, लेकिन जो रियलाइजेशन होता है वो तो होता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई शक्ति, भले मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने एक बार बोला था कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कभी कोई शक्ति का कभी कोई कुछ होता है तो आप उसका आह्वान करो, उस समय आह्वान करोगे तो आपको ताकत मिल जाएगी, लेकिन वो आह्वान करना ही भूल जाते हैं, उस समय तो जैसे लड़ाई के मैदान में बैठे हैं। तो कोई ना कोई शक्ति की कमी है जिसके कारण पेपर आता है। तो और दूसरी बहुत बड़ी बात है सर्व के संस्कार मिलाने का पेपर। हमने ये दादी जी में देखा था, दादी चलती थी ना, दादी प्रकाशमणि जी चलते थे ना, तो बहुत सारे लोगों के साथ में लेके चलते थे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उस समय कोई बड़ा छोटा रहता नहीं था। तो जब भी रात्रि क्लास हो या कहीं हम दादी के साथ एक दो बार टूर में भी गए थे, तो हम तो उस समय मधुबन में नए नए थे, तो दादी जी ने हमको साथ में लिया और बोला कि बाजू वाला पलंग है ना उसमें तुम सो जाना। मैं तो घबरा गई, दादी जी के सामने में कैसे, नहीं नहीं सो जाओ कोई बात। तो दादी जी मुझे चाय पिलाती थी सब। कहने का मतलब कि उसी समय भी हमको ऐसा लगता था कि ये इतनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन सबको साथ में देखने जाती थी कौन सोया कौन नहीं सोया, किसी को कुछ मिला नहीं मिला, खाना मिला या कुछ भी, बहुत पालना किया है। तो ये सर्व के संस्कार मिलाने का, गाड़ियाँ भी चलती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि हम गए थे ना, तो कुछ थोड़ा एक्सीडेंट जैसा हो गया था, तो कुछ किसी को लगा था किसी को नहीं लगा था, लेकिन दादी ने हम सबको पक्का कराया था कि ये छोटी बात है, ये सब फैलाने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहना सब, क्योंकि छोटी बात बड़ी हो जाती है। सबको कुछ इतना लगा नहीं था, लेकिन क्या है कि हमको ऐसा भाई वहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो दादी जी में हमने देखा है, दादी जी थी ना उसकी, वो जो भी दादियाँ थी वो एक माला के मणके थे, एक दूसरे की कभी भी वो नेगेटिविटी देखते ही नहीं थे, और एक दूसरे में इतना सब संभल करके चलते थे, इतना अच्छी रीति से चलते थे। एक बार क्या हुआ कि मुझे है ना, तो ये इंद्रप्रस्थ में तभी कांच नहीं था, तो दादी जी सभी दादियाँ बैठी थी, और इसमें कुलचर दादी नहीं थी, लेकिन बड़ी दादी जी थी और चंद्रमणि दादी जी थी, सब थे, लेकिन मुझे नीलू ने बोला कि इधर आओ तुम इसके बात सुनो। हमने क्या सुना, वो सभी एक दूसरे का सुनाते थे, लेकिन दादी चंद्रमणि जी को नहीं सुनाई देता था, दादी जी को कम सुन, तो सभी बात तो करते थे बहुत अच्छी रीति से, लेकिन उनको एक मेरा ये जो बात करती उसका रिस्पॉन्स ही मिल रहा है, कोई किसी की बात से कुछ मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी खुश थे। तो मतलब कि हमने देखा कि कैसे मतलब कि मिलजुल करके चलते हैं। तो ये दादी जियों में हमने देखा था संस्कार मिलाने का। शांतामणि दादी जी को हमने एक बार पूछा कि आपको तो कभी स्टेज पर बिठाते ही नहीं है दादी, आपको बोलना चाहिए ना, मैं क्या करना है, दादी बैठी है ना, वो है ना, हम जैसे वो छोटे छोटे बच्चे और माँ चलाती है, ऐसे लगता था कि कोई उनकी ये नहीं थी। तो हमने चंद्रमणि दादी जी में भी देखा कि कुछ भी बात उनके कहते थे कि दादी, तो दादी कहती है देखो ऐसा ड्रामा तो इतना अच्छा है, बाबा देखो हमको मिला है, मतलब कोई किसी की कंप्लेन ही नहीं है, कोई किसी का इतना चल करके साथ में चल। और चंद्रमणि दादी जी को दादी जी ने जब बोला कि आपको यहाँ आना है, तो दादी जी सब कुछ छोड़ के यहाँ गई, कोई संकल्प नहीं चला। तो ये उनकी कितनी संस्कार मिलाने का, कोई अपोजिशन कुछ नहीं। तो ये बाबा कहते हैं कि वो सर्व के संस्कार मिलाने का जब हमारे में आ जाता है तो कोई कंप्लेन नहीं रहती है। तो ये तो छोटे छोटे पेपर है, लेकिन छोटे छोटे पेपर में बाबा कहते कितना हिलते हैं, बहुत हिल जाते हैं, फिर अपने को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, लेकिन पहले तो हिल ही जाते हैं। लेकिन ये तो हल्के पेपर है, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा चेक करो आप कहाँ कहाँ आप हिलते हो। दूसरा है बेहद का पेपर, तो बहुत बड़ा है, लेकिन पहले हद के पेपर जो है। और एक पेपर है कि ब्राह्मण द्वारा जो आता है ना परीक्षा का पेपर, वो तो बहुत कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानी लोगों को तो माफ़ कर देते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा कर दिया तो भी माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं उसके ज्ञान। लेकिन ज्ञान साथ साथ रहते हैं ना, उनकी इतनी गलती होती है ना, उसको हम नहीं माफ़ कर सकते, कोई किसी को माफ़ नहीं करते। भले अब ऊपर से कह भी देते लेकिन अंदर से रहता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? ये ब्राह्मण ब्राह्मण द्वारा जो संस्कार होते हैं, तो बाबा कहते स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर बहुत बार आता है। और छोटे से ब्राह्मण संस्था तो कितना छोटा है, हम जिस कमरे में रहते हो कितना छोटा संसार है, हम जिस जगह रहते हो कितना छोटा, लेकिन उसमें कैसी कैसी परीक्षाएं आती हैं, तो हिल जाते। तो बाबा कहते हैं हद के पेपर में पास हो गए हैं, तो फिर बेहद के पेपर क्या है? बेहद के पेपर में अनादि तत्व द्वारा पेपर आएगा, ये तत्व जो है उसके द्वारा पेपर आएगा। और बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, हर अलग अलग प्रकार का वायरस आएगा, वो कहता है ये आएगा, तीसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर आएगी, तो लोगों को मतलब अंदर से डर जाते हैं। और बेहद सृष्टि के तमो प्रधानता, तो देखो मधुबन में हम जो बी के भाई बहन, उसका चेहरा देखो और बाहर जाके चेहरा देखो, हमें यहाँ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर से आप देखोगे ना, बाहर जा कर के गाड़ी में बैठोगे इसमें, तो कोई विचित्र लगता है, कोई मतलब अच्छा नहीं लगता है। और कितने भी वो लोग सज धज करके आते हैं, लेकिन उनको देख करके कुछ अलग सा ही लगता है। तो सृष्टि के तमो प्रधान और अशुद्ध वाइब्रेशन है, उसका वायुमंडल कैसे चलता है? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बेहद का पेपर देने से पहले तो हद का पेपर, उसमें अभी देखो जितने समय से हम पढ़ रहे हैं, तो अपने को चेक करो, क्या चेक करो कि पास मार्क्स है क्या? नहीं, इसमें हम पास मार्क्स आते हैं नहीं, वो तो अलग है, वो 35% 50% अलग है, वो तो बहुत बड़ी बात है कि उस पेपर में पास भी तो ऑनर सम्मान सहित पास हो जाना, तो आप अपने को चेक करो। तो बाबा कहते हैं चेकिंग बहुत ज़रूरी है ना, अभी चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं कर सकेंगे। तो हद के पेपर में बाबा कहते हैं जैसे उस पेपर में देखते हैं वैसे उसमें भी देखो। फिर है बाबा कहते छोटी छोटी बातें जब आती है ना, तो पहले तो घबरा जाते हैं हम, कमरे में भी कुछ आता था ना कोई जीव जंतु, तो हाँ कॉकरोच तो अभी नहीं डरते हैं, उसको छिपकली आती है तो बाथरूम में आ गई तो जाते नहीं जल्दी से, डरते हैं क्यों? क्योंकि वो पता नहीं है ऐसे हो गया है। तो बाबा के इतनी छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, हम घूमने जाते हैं तो हमको डर लगता है, कुत्ते का डर लगता है, बंदर का डर लगता है, हम जाते नहीं हैं, वो पीछे पीछे ही आता है। तो कहने का मतलब इतनी छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। तो हाँ एक बार वो आगे बैठी थी ना, तो पीछे यो पीछे से आया और रोटी लेके चला गया, और फिर उसने उठ करके हो गई, उठा के भी ले गया। और एक बार क्या हुआ कि वो जो भाई, एक भाई था ना यहाँ, तो उसने वो जो आया ना तो उसको यहाँ बैठ गया, अभी उतार कैसे, तो उसने बेंच जैसे उठाई ना वैसे ऐसे ऐसे बंद, ऐसे छोटी एग्जाम है, छोटी छोटी एग्जाम, लेकिन उस समय कैसा लगता है। तो बाबा कहते लेकिन फिर भी माया के बुदबुदे हैं, माया के बुदबुदे कैसे, क्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसे खेलते हैं, और भाई है ना क्या करते हैं वो भी बताऊँ मैं, बहने जो टेबल पर बैठते हैं वहाँ खिड़कियाँ हैं, और भाई यहाँ बैठते हैं तो उसको रोटी बताते हैं, बताओ तो कैसे क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस कहाँ से करेंगे हैं। फिर मजाक लेते थे, फिर उस समय छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी उस समय तो बाबा कहते हैं फिर भी क्या है, माया के बुदबुदे हैं। और बाबा कई बार कहते हैं कि आप सर्वशक्तिवान हो और बच्चे तो देखो छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन वो खेलना तो अलग है ना, वो तो सबको पता है उससे कुछ। लेकिन ये बाबा तो कई बार कहता है ये माया टाइगर पेपर टाइगर है वो है, लेकिन फिर भी टाइगर तो डर तो लगता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी अपने को चेक करो। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस तो हो ही आप। फिर बाबा ने कहा कि वो दादियों से बात किया है, बड़ी दीदी से, तो बड़ी दीदी जी से वार्तालाप किया है। वो भी बोला कि आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो, तो रिटर्न जो मिलता है ना तो सर्व प्राप्तियाँ मिलती है, सहज मिलती है। बाबा कहते हैं कभी कभी हिम्मत का एक संकल्प है ना, एक संकल्प आप करो तो हजार संकल्पों का सहयोग बाप का मिलता है, और प्रत्येक फल प्राप्त कराने वाली आत्माएं कभी मुश्किल का अनुभव नहीं करती है। तो ये दादियाँ और जो अभी सीनियर जो है और बहुत पुरुषार्थ करने वाले प्रत्येक फल प्राप्त कराने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं उनको इतना सहज अनुभव होगा कि अभी अभी जो भी बात होती है सिर्फ ऐसा लगता है कि रिपीट कर रहे हैं, अभी अभी हुई है, 5000 साल की बात नहीं, अभी भी हुई है, तो इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं पड़ता है। और बाप से समीप रहने वाली आत्मा प्रत्येक फल का अनुभव करेगी, क्योंकि बाप को समीप रखा है, चलते फिरते उठते बैठते जब बाबा को साथ में रखते हैं तो समीप का अनुभव होता है, तो बोझ अनुभव नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि ये बच्चे जो है ना जो समीप रहने वाले हैं, दूर रहने वाले तो अलग है, लेकिन समीप रहने वाले जैसे बाबा की गोदी में खेलते हैं, गोदी में जो होता है बच्चा माँ की गोदी में होता है, बाप की गोदी में होता है, तो क्या होता है उसको इधर घूमेगा उधर घूमेगा, उसको मालूम है कि मुझे गिरने नहीं देंगे, तो कितना नहीं नीचे रखो तो चिल्लाएगा ना, रोएगा ना, सब कुछ करेगा। तो बाबा कहते आप कहाँ हो, बाप की गोदी में हो, संगम युग है ही बाप की गोदी, तो बाप की गोदी में हो, तो गोदी में चल रहे हो तो अतीन्द्र सुख का अनुभव करना चाहिए। तो मेहनत कैसी होनी चाहिए, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या वैसे मेहनत अविद्या के रूप में हो। तो ऐसे दादियों के साथ बाप दादा ने मुलाकात की, और बाबा ने अपने को चेक करने के लिए कहा कि अपनी तस्वीर को बराबर बताओ, ऐसी तस्वीर बनाओ जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का मतलब साधन बन जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष करने के लिए वाणी भी काम में नहीं आएगी लेकिन अनुभव काम में आएगा, और आपको चलन चेहरे से उनको मालूम पड़ जाए कि किस किसके हैं और क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी अपनी चलन और चेहरा इसके पर भी बहुत अटेंशन देना है, और अपना आने वाला जो समय है उसमें भी हमें और आगे पुरुषार्थ करके अपनी तस्वीर को अच्छी बनानी है। ओम शांति।